नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शास्त्रों में आता है दूसरों के उत्कर्ष को देखकर मन में प्रसन्न होना चाहिए, उससे अपना मन बहुत शांत और पवित्र रहता है। दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर की उन्नति देखकर जलने लगा, शकुनी से विचार विमर्श करने के बाद तय हो गया कि पांडवों को बुलाकर जुआ खेलना चाहिए। ऊपर ऊपर से धृतराष्ट्र मना तो करता है, अंदर में धृतराष्ट्र अनुमति दे देता है, अंत में भी देता है, अंदर से भी वो चाहता था कि दुर्योधन की बात के अनुसार दुर्योधन को राजलक्ष्मी मिलनी चाहिए, विदुर जी को भेज दिया इंद्रप्रस्थ के लिए। विदुर जी की इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रग्रामी रथ पर सवार हो इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां की जनता ने स्वागत पूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुंचाया। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से विदुर जी से मिले, यथोचित सत्कार किया और नम्रता से पूछा, विदुर जी आपका मन कुछ खिन्न खिन्न सा दिख पड़ता है, क्या बात है? आप कुशल पूर्वक तो है ना? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं ना? हस्तिनापुर के वैश्य सब राजा के अधीन तो रहते हैं ना? बोलिए विदुर जी, आपके मन में क्या संताप है? विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र और सगे संबंधियों के साथ सकुशल है। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने कुछ संदेश दिया है। युधिष्ठिर जी ने कहा, सुनाइए, प्रसन्नता से सुनाइए विदुर जी, आप गंभीर क्यों हो गए? विदुर जी ने अपने मन को मजबूत करते हुए कहा, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र ने कहा है कि मैंने भी तुम्हारी जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनाई है और तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ बैठ करके जुआ खेलो। धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? द्यूत खेलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये कल्याणकारी काम थोड़े है, ये तो केवल झगड़े की बखेड़े की जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार काम करना चाहते हैं विदुर जी, पर जुआ खेलने की बात आज नई क्यों आई यहां? विदुर ने कहा, धर्मराज, मैं ये भली भांति जानता हूं कि जुआ खेलना सारे अनर्थों की जड़ है, मैंने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया परंतु सफलता नहीं मिली। मैं यहां प्रसन्न मन से थोड़े ही आया हूं, मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूं। अब आप जो भी उचित समझे वो करें। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महात्मन क्या वहां धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हुए हैं क्या? हमें किन के साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? विदुर जी ने कहा, गांधार राज शकुनी को तो आप जानते ही है ना, वह पासा फेंकने में बड़ा प्रसिद्ध, वो पासों का निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त विविंशति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय आदि भी वहां विद्यमान है। और शकुनी की चालों को युधिष्ठिर तुम समझते ही होंगे। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी तब तो आपका कहना ठीक है, इस समय बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट हो रहा है। अस्तु, सारा संसार भाग्य के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है। यदि धृतराष्ट्र मुझे आज्ञा न देते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता, पर क्या करूं, धृतराष्ट्र ने मुझे आज्ञा दी है। धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा दी कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। तैयारी पूरी हो गई। प्रातःकाल चलने के समय युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा के साथ विधिपूर्वक मिले। तदनंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनी, समागत राजा, दुशासन आदि भाई, जयद्रथ एवं समस्त कुरुवंशियों से मिलजुल कर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र ने पतिव्रता गांधारी एवं प्रज्ञा चक्षु पिता तुल्य धर्मराज ने पतिव्रता गांधारी एवं प्रज्ञा चक्षु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्न जटित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतःपुर की स्त्रियों से यथायोग्य मिली। दूसरे दिन प्रातःकाल सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जुए के खिलाड़ियों ने वहां सबका सहर्ष स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत, सत्कार आदि का व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपने अपने आयु के अनुसार, योग्यता के अनुसार आसन पर बैठ गए। तदनंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव रखा, धर्मराज ये सभा आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसी सुंदर सभा द्यूत के लिए, द्यूत क्रीड़ा के लिए बनाई गई थी, अब पासे डालकर जरा खेल का शुभारंभ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे मामा जी, जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है। इसमें न तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है। जगत का कोई भी भला मानुष जुआरियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता है। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हो? आपको निर्दय पुरुषों के समान कुमार्ग में हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार नहीं करते। ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है वह यदि कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात, यह तो बतलाइए कहां यहां के इकट्ठे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा, कौन दाव लगाएगा? कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए। दुर्योधन ने कहा, दाव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। जुआ आरंभ हुआ। उस समय धृतराष्ट्र के साथ बहुत से राजा वहां इकट्ठे होकर आए थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जी सब अंदर ही अंदर बड़े खिन्न थे। युधिष्ठिर ने कहा, सागरावर्त में उत्पन्न सुवर्ण के सब आभूषण मणिमय हार मैं दाव पर लगाता हूं, आप क्या दाव पर लगा सकते हैं? दुर्योधन ने कहा, मेरे पास बहुत सी मणियां हैं, मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता, आप इस दाव को जीतिए। तो दाव लग जाने पर पासों के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला, यह दाव मेरे हाथ में रहा। और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत हो गई। शकुनी ने युधिष्ठिर ने कहा, शकुने यह तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, इस बार मैं 118,000 मोहरों से भरी थैलियां, अक्षय धन भंडार और बहुत सी स्वर्ण राशि दाव पर लगाता हूं। शकुनी ने कहा, हे, ये भी मैंने जीत लिया। यह कहकर पासे फेंके और जीत हो गई। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की संदूकों में 400 खजाने बंद हैं, एक एक में 5-5 द्रोण सोना है, वह मैं सब दाव पर लगाता हूं। शकुनी ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर, ये दाव भी मैंने जीत लिया। इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह अन्याय विदुर जी से नहीं देखा गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू किया। विदुर जी ने कहा, महाराज, मरणासन्न रोगी को दवाई अच्छी नहीं लगती, ऐसी मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी मेरा प्रार्थना करना अपना कर्तव्य, ध्यान से सुनिए। ये पापी दुर्योधन जिस समय गर्भ से बाहर आया था उस समय गीदड़ के समान चिल्लाने लगा, ये कुलक्षण कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा, यह कुलकलंक आपके घर में रहता है, परंतु आपको मुंह बस इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीति की बात बतलाता हूं। जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त होता है तब उसे अपने शराब पीने का भी होश नहीं रहता है। नशा होने पर वह पानी में डूब मरता है या धरती में गिर मरता है। वैसे ही दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि उसे इस बात का भी पता नहीं है कि पांडवों से बैर विरोध मोल लेने का फल इसकी घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजा ने पूर्ववासियों के हित के लिए अपनी कुकर्मी पुत्री का पुत्र का परित्याग कर दिया था। भोजवंशियों ने दुरात्मा कंस को छोड़ दिया था और भगवान कृष्ण के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाने पर सारे भोजवंशी खुश हो गए थे। दूसरी तरफ आप हैं जो अपने पुत्र को उत्साहित कर रहे हैं। राजन, आप दुर्योधन को आज्ञा दीजिए, आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वो पापी दुर्योधन को दंड देकर ठीक कर दे। इसे दंड देने पर ही कुरुवंशी सैकड़ों वर्षों तक सुखी रह सकते हैं। कौवे या गीदड़ के समान दुर्योधन को त्याग कर मयूर अथवा सिंह के समान पांडवों को अपने पास रखें। आपको शोक न हो, इसका यही मार्ग है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष का त्याग कर सकते हो, गांव की रक्षा के लिए कुल का त्याग कर सकते हो, देश की रक्षा के लिए गांव का त्याग कर सकते हो, और आत्मा की रक्षा के लिए देश को भी छोड़ देना न्याय है। सर्वज्ञ महर्षि शुक्राचार्य ने जम्ब दैत्य के परित्याग के समय असुरों से एक बड़ी सुंदर कथा कही थी, उसे आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था, किसी वन में बहुत से पक्षी रहते थे, वे सब के सब सोना उगला करते थे। उस देश का राजा बड़ा लोभी और मूर्ख था। उसने लोभवश अंधे होकर एक साथ बहुत सा सोना पाने के लिए उन पक्षियों को मरवा डाला। वो पक्षी रोज सोना देते थे, तो देखा कि ज्यादा सोना मिलेगा, मरवा दिया। जब वे अपने घोंसलों में निरीह भाव से बैठे हुए थे, इस पाप का फल क्या हुआ? किसी वन में बहुत से पक्षी रहा करते थे, वे सब के सब सोना उगला करते थे। उस देश का राजा बड़ा ही लोभी और मूर्ख था। उसने लोभवश अंधे होकर एक साथ ही बहुत सा सोना पाने के लिए उन पक्षियों को मरवा डाला। जबकि वे अपने अपने घोंसलों में निरीह भाव से बैठे हुए थे, इस पाप का फल क्या हुआ? यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं मिला, आगे के मार्ग और बंद हो गए। मैं स्पष्ट कह देता हूं कि पांडवों की धनराशि पाने की लालच से आप लोग इनके साथ द्रोह मत करो, नहीं तो उसी लोभांध राजा के समान आप लोगों को पीछे पछताना पड़ेगा। राजर्षि भरत की पवित्र संतानों, मेरी बात को बिल्कुल हृदय से स्वीकार करो कि जैसे माली बगीचे के वृक्षों को सींचता है और समय पर खिले पुष्पों को चुनता है, वैसे ही आप पांडवों को स्नेह जल से सींचिए और उपहार रूप में आप बार बार धन लेते रहिए। वृक्षों की जड़ में आग लगाकर उन्हें भस्म करने के समान पांडवों का सर्वनाश करने की चेष्टा मत कीजिए। आप निश्चय समझिए, पांडवों के साथ विरोध करने का फल यह होगा कि आपके सेवक मंत्री और पुत्रों को यमराज का अतिथि होना पड़ेगा। ये जब इकट्ठे होकर रणभूमि में आएंगे, तब देवताओं के साथ स्वयं इंद्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हे सभासदों, जुआ खेलना कलह का मूल है। जुए से आपस का प्रेम भाव नष्ट होता है। बड़े भय के बनाव बन जाते हैं। दुर्योधन इस समय उसी विपत्ति की सृष्टि में संलग्न है। इसके अपराध से प्रतीप, शांतनु और वाल्मीकि के वंशज घोर संकट में पड़ेंगे। जैसे उन्मत्त बैल अपने सींगों से अपने आप को घायल कर देता है, वैसे ही ये दुर्योधन उन्मादवश अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए, मोहवश अपने विचार का तिरस्कार मत कीजिए। हे महाराज, अभी आप दुर्योधन की जीत देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे, परंतु इसी के कारण शीघ्र ही युद्ध का आरंभ होगा, जिसमें बहुत से वीर मारे जाएंगे। आप बातों में तो जुए से विरोध प्रकट करते हैं, लेकिन भीतर से आप खुद जुआ खेलाना चाहते हैं, आप भीतर से दुर्योधन के मुंह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, यह विचारहीनता है आपकी। पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा। प्रतीप और शांतनु के वंशजों, आप लोग इस सभा में दुर्योधन आदि की व्यंग्योक्ति और बड़ी बड़ी बातें सहन कर लें, परंतु इस अज्ञानी के अनुयायी बनकर धधकती हुई आग में न कूदें। ये जुए के पागल जब पांडवों का भरपेट तिरस्कार कर लेंगे और वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे, तब देखना इस उपद्रव के समय में कौन मध्यस्थता कर सकेगा। हे महाराज धृतराष्ट्र, आप तो जुए के पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे। आपके पास कोई धन की कमी थी? फिर आप ये जुए से धन बटोरने का क्या उपाय कर रहे हो? यदि आप पांडवों का धन जीत भी लेंगे तो इसमें आपका कौन सा भला हो जाएगा? आप पांडवों का धन नहीं, पांडवों को ही अपनाओ ना। धन अपना के क्या करोगे? पांडवों को अपनाओ, ऐसा व्यवहार करो कि पांडव आपके लिए मरे मिटे हैं। फिर तो आपकी सारी संपत्ति अपने आप आपकी हो जाएगी। इस पहाड़ी शकुनी के द्यूत कौशल से मैं अपरिचित नहीं हूं और इसकी कपट भरी चालें हमारे खूब समझ में आती हैं। ये खूब छल करना जानता है। बस अब बहुत हो चुका, यह जिस राह से आया है उसी राह शीघ्र यहां हस्तिनापुर से लौटकर अपने राज्य में चला जाए। इसी में हस्तिनापुर की भलाई है। पांडवों के साथ लड़ाई की बिल्कुल बात मत ठानिए। दुर्योधन खड़ा होकर बोलता है, विदुर, ये कौन सी बात है कि तुम सदा शत्रुओं की प्रशंसा और हम लोगों की निंदा करते रहते हो? आप यहां के मंत्री होकर यहां के राजकुमारों को, राजा को धमकाते हो? अपने स्वामी की निंदा करना तो कृतज्ञता है। तुम्हारी जीभ तुम्हारे मन की बात बतला रही है। तुम भीतर ही भीतर हमारे विरोधी हो। तुम हमारे लिए गोद में बैठे हुए सांप के समान हो और पालने वाले का गला घोटने पर उतारू हो रहे हो। इससे बढ़कर पाप और क्या होगा? क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तुम समझ लो कि मैं जो चाहे सो कर सकता हूं। मेरा अपमान मत करो, मेरे लिए ऐसी कड़वी बात मत बोलो विदुर। मैं तुमसे अपने हित के संबंध में कब पूछता हूं कि तुम मेरा हित देखो? बस बहुत सह चुका हूं, हद हो गई है। अब मुझे मत बेधो, मेरा हृदय तुम्हारी बातों से छलनी छलनी हो रहा है। देखो, संसार का शासन करने वाला एक ही है, दो नहीं। वही माता के गर्भ में भी शिशु पर शासन करता है। मैं भी उसी के शासन के अनुसार काम कर रहा हूं। तुम बीच में उछल कूद मचाकर शत्रु मत बनो, मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। मेरी प्रज्वलित अग्नि को उकसाकर तुम सोचते हो कि मैं भाग जाऊंगा? नहीं होगा। तुम हमारी अग्नि के अंदर राख हो जाओगे और राख भी तुमको नहीं मिलेगी, तुम्हारी राख भी नहीं मिलेगी। भरी सभा में शत्रु पक्ष का पक्ष लेते हो, इसलिए मैं आपको इस सभा में भूलता हूं सबके सामने। तुम जहां चाहो वहां चले जाओ, हस्तिनापुर को तुम्हारे जैसे विदुर की कोई आवश्यकता नहीं है। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम तो अच्छे बुरे सभी बकामों में मीठी मीठी बात सुनना चाहते हो, कड़वी बात कभी जीवन में सुनना ही नहीं चाहते। अरे भाई, तब तो तुम्हें स्त्रियों और मूर्खों की सलाह लेनी चाहिए। देखो, चिकनी चुपड़ी कहने वाले पापियों की संसार में कोई कमी नहीं है, परंतु वैसे लोग बड़े दुर्लभ हैं जो अप्रिय बात तो बोलते हैं लेकिन जिनकी बात से आगे जाकर हित होता है। परिणाम पर विचार करो दुर्योधन, जो अपने स्वामी के प्रिय अप्रिय का ख्याल न कर धर्म पर अटल रहता है और अप्रिय होने पर भी हितकारी बात कहता है, वो राजा का सच्चा सहायक है। देखो क्रोध एक तीखी जलन है, यह बिना रोग का रोग है। क्रोध कीर्ति नाशक है और क्रोध दुर्गंध युक्त है। इसे सत्पुरुष कभी भी अपने अंदर आने नहीं देते हैं। क्रोध यदि उनमें उत्पन्न होता है तो उसको तत्काल शमन कर लेते हैं। दुर्जन में और सज्जन में क्या फर्क है? सज्जन अपने क्रोध को दबा लेते हैं और दुर्योधन और दुर्जन उसमें क्रोध में जल जाते हैं। तुम इसे पी जाओ, दुर्योधन शांति प्राप्त करो। मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के धन और यश की बढ़ोतरी देखना चाहता हूं। तुम्हारी इच्छा हो जो करो, मैं तुम्हें बाबा दूर से ही हाथ जोड़ता हूं। विदुर जी मौन हो गए। शकुनि ने कहा, युधिष्ठिर अब तक तुम बहुत सा धन हार चुके हो, अब तुम्हारे पास कुछ और भी बचा हो तो रख दो दांव पर। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने मेरे पास अभी तो बहुत असंख्य धन है, उसे मैं जानता हूं, पर तुम पूछने वाले कौन हो? अयुत प्रयुत पद्म अर्बुद खर्व शंख निखर्व महापद्म कोटि मध्यम और परार्ध तथा इससे भी अधिक धन मेरे पास है, मैं सब दाव पर लगाता हूं। शकुनि ने पासा फेंकते हुए कहा कि युधिष्ठिर ये धन भी अब मेरा होने वाला है। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों और अपनी संपत्ति को छोड़कर नगर देश भूमि प्रजा और धन को भी मैं दाव पर लगाता हूं। शकुनि ने कहा, वाह युधिष्ठिर, संपत्ति खोते जा रहे हो, दाव लगाते जा रहे हो, कितने अच्छे खिलाड़ी हो। हे इस पासा से मैंने तुमको जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, जिनके नेत्र लाल लाल और सिंह के समान कंधे हैं, जिनका वर्ण श्याम और भरी जवानी है, उन्हीं नकुल को, हां अपने प्यारे भाई नकुल को मैं दाव पर लगाता हूं। शकुनी ने कहा, अच्छा तुम्हारे भाई राजकुमार नकुल, वाह वाह क्या कहना है, हे ये भी मेरे अधीन हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, तो फिर मेरा भाई सहदेव धर्म का व्यवस्थापक है, हम सब लोग सहदेव को पंडित कहते हैं, अवश्य ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दाव पर लगाने योग्य तो नहीं है, परंतु फिर भी मैं उसको भी दाव पर लगाता हूं। शकुनि ने फिर पासे फेंकते हुए कहा, युधिष्ठिर यह सहदेव को भी हमने जीत लिया। युधिष्ठिर बड़े घबरा गए। युधिष्ठिर की स्थिति ऐसी हो गई, वो अपने मुंह से यह भी नहीं कह सकते कि मैं द्यूत में हार गया, और वो ये भी नहीं कह सकते कि अब मेरे पास दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी घोर व्याकुलता की स्थिति हुई तो युधिष्ठिर ने कहा, अब मेरे भाई महाप्रतापी संग्राम विजयी अर्जुन को मैं दाव पर लगाता हूं, यद्यपि दाव पर लगाने योग्य नहीं है, पर विवश होकर दाव पर लगाता हूं। शकुनि ने फिर छल से पासा फेंका और उछल करके कहा कि अर्जुन को भी मैंने जीत लिया। शकुनि बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ठहाका मार के हंसने लगा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन मेरे सेनापति हैं, अनुपम बली हैं, सिंह के समान इनके कंधे हैं, भौंहें चढ़ी रहती है, गदा युद्ध में प्रवीण है और सर्वदा शत्रुओं पर क्रोध रखते रहते हैं, मेरे भाई भीमसेन दाव के योग्य नहीं है, फिर भी मैं उन्हें दाव पर लगाता हूं। शकुनी ने अपने हाथ में पासा लिया और भीमसेन को कई देर तक देखा। इस समय दुर्योधन भी भीमसेन को खूब गहरी नजरों से देख रहा था। शकुनी ने अपने पासे को बड़े ढंग से लिया और उस पासे को चलाने में बड़ी चालाकी और चतुराई की, और चतुराई के अनुसार वो पासा भी शकुनी ने जीत लिया। दुर्योधन के आनंद की अब कोई सीमा नहीं रही। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, भीमसेन को आपने जीत लिया, अब दुर्योधन का कोई विरोधी नहीं रहा। युधिष्ठिर महाराज बड़े गंभीर हो गए। युधिष्ठिर ने कहा कि अपने भाइयों को दाव पर लगाने के बाद मैं अपने आप को बचाकर नहीं रख सकता, यदि मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारे यहां सेवक बनकर काम करूंगा। शकुनी ने कहा, तो फिर इंद्रप्रस्थ के महाराज सम्राट रासु यज्ञ को करने वाले सारे राजाओं से कर लेने वाले महाराजाधिराज युधिष्ठिर शकुनी के यहां सेवक बनने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा कहकर उसने पासा फेंका और फेंकते ही शकुनी ने कहा कि मेरी जीत हो गई। शकुनी ने कहा, तुमने अपने को जुए में हराकर, जुए में हार कर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास रहते अपने को हार जाना बड़ा अन्याय होता है। अभी तो तुम्हारे पास दाव लगाने पर एक चीज और बाकी है, उसे भी दाव पर लगाओ। अब की बार तो तुम दाव जीत भी सकते हो, और वो वस्तु है तुम्हारे पास तुम्हारी प्रिया द्रौपदी। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, द्रौपदी बड़ी सुशील प्रियवादिनी अनुकूल आचरण करने वाली, सब चरावा है सेवक है उनका भी ध्यान रखती है, सब जब सो जाते हैं तब वो उनके बाद सोती है और सबसे पहले जगती है। सभी कार्यों के होने न होने का ये पूरा ध्यान रखती है, लेकिन तुमने द्रौपदी की याद दिलाई, यद्यपि वो दाव के योग्य नहीं है, परंतु सर्वांग सुंदरी लावण्यमयी द्रौपदी को भी मैं दाव पर लगा रहा हूं, यद्यपि ऐसा कहते हुए मेरा हृदय फटता जा रहा है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर चारों ओर धिक्कार की बौछारें होने लगी, सारी सभा क्षुब्ध हो गई, सभ्य राजा शोकाकुल हो गए। भीष्म द्रोण कृपाचार्य बड़े बड़े महापुरुष उस समय अपना सिर नीचे कर लिए, इनके शरीर से पसीने बहने लगे। विदुर जी सिर पकड़ पर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटकाकर चिंताग्रस्त हो गए और धृतराष्ट्र हर्षित हो रहा है। वे बार बार पूछते, क्या मेरी जीत हो गई? दुशासन कर्ण आदि की खल मंडली बहुत हंस रही है, एक दूसरे को देख देख कर व्यंग्यात्मक इशारे करने लगे। बहुत से सभासदों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। दुष्टात्मा शकुनी ने ऐसे वातावरण में विजयोन्माद से उन्मत्त होकर पासे लिए और उस पासे को इस प्रकार फेंका और अंत में उछल करके कहा, ये पासा भी मैंने जीत लिया है। अब दुर्योधन ने विदुर जी को पुकार के कहा, विदुर तुम आओ यहां, तुम जाकर पांडवों की प्रीतमा सुंदरी द्रौपदी को शीघ्र लेकर आओ, वह अभागिनी यहां आकर हमारे महल में झाड़ू लगाएगी, दासियों के साथ रहेगी। पांडवों का बहुत पक्ष देते थे ना, लाओ उसको, बनाओ यहां सेविका। विदुर जी ने कहा, मूर्ख तुझे पता नहीं है कि तू फांसी पर लटक रहा है, मरने वाला है, तभी तो तेरे मुंह से ऐसी निकृष्ट वाणी निकल रही है। ये द्रौपदी तेरे लिए माता के समान है, बड़े भाई की पत्नी होने से माता के समान है, और तू इन पांडव सिंहों को क्यों क्रोधित कर रहा है? तेरे सिर पर विषैले सांप क्रोध से फन फैला फैलाकर फुंकार कर रहे हैं, तू इनसे छेड़का नहीं करता है, यमपुरी चला जाएगा। देख, द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर को द्रौपदी का दाव लगाने का कोई अधिकार नहीं था। सभासदों, जब बांस का नाश होने पर होता है तब उसमें फल लगा करते हैं। मतवाले दुर्योधन ने जड़मूल से नष्ट होने के लिए जुए के खेल से घोर बैर और महाभय की सृष्टि की है। मरणासन्न पुरुष को हित अहित का ज्ञान नहीं होता, किसी को मर्मभेदी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, कठोर और उद्वेग वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दुर्योधन याद रखना, ये सब अधः पतन की बात है, किसी को कड़वी बात मत कहो। कड़वी बात निकलती तो मुंह से है, पर जिसके लिए निकलती है उसके मर्म स्थान में पहुंचुब कर रात दिन विभल किया करती है। इसलिए अपनी वाणी का संयम रखो, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। धृतराष्ट्र बड़े भयंकर विकट संकट के निकट पहुंच गया है, दुशासन आदि भी इसी की हां में हां मिलाते हैं। चाहे तूंबा जल में डूब जाए, पत्थर चाहे तैरने लगे, परंतु यह मूर्ख मेरी हितकारी बात कभी नहीं मानेगा। यह मित्रों की श्रेष्ठ और हित भरी बात कैसे सुनेगा, क्योंकि यह अपने हित को कभी भी छोड़ चुका है। इससे निश्चय होता है कि कौरवों का सर्वस्व नाश का श्री गणेश आज हो चुका है। मदांध दुर्योधन ने विदुर को धिक्कार भरी सभा में प्रातिकामी से कहा, तुम इसी समय जाकर द्रौपदी को लेके आओ। पांडवों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पांडव अब मेरे सेवक हैं। प्रातिकामी दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार द्रौपदी के पास गया और कहा, साम्राज्ञी, सम्राट युधिष्ठिर जुए में सब धन हार गए। जब दाव पर लगाने के लिए कुछ नहीं रहा, तब उन्होंने भाइयों को दाव पर लगा दिया, फिर अपने को भी लगा दिया, अंत में आपको भी हार दिया। अब आप दुर्योधन की जीती हुई वस्तु में हो गई हैं। मुझे इस समय यह कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि आपको लाने के लिए मुझे दुर्योधन ने भेजा है। मैं जानता हूं इससे कौरव कुल का नाश होगा। द्रौपदी ने कहा, ओ सूत पुत्र, अवश्य विधाता का यही विधान होगा। बालक वृद्ध सभी पर दुख सुख तो पड़ते ही है। जगत में धर्म सबसे बड़ी वस्तु होती है। यदि हम दृढ़ता से धर्म पर आरूढ़ रहे तो यह हमारी रक्षा करेगा। लोग धर्म को भूल जाते हैं। धर्म का पालन करो, यही धर्म हमारी रक्षा करेगा। तुम सभा में जाओ और वहां के धर्मात्माओं से पूछो कि ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहती हूं। पूछो उनसे कि क्या मुझे धर्म का उल्लंघन करना चाहिए। द्रौपदी की बात सुनकर प्रातिकामी सभा में लौट आया और सभासदों से यही बात कही जो द्रौपदी ने पूछी। सभी सभासदों ने अपना मुंह नीचा कर लिया, सबको दुर्योधन का बड़ा भय था। दुर्योधन का हट जानकर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। महात्मा पांडव उस समय बड़े दुखी और दीन थे। सत्य से बंधे होने के कारण क्या करना चाहिए, क्या निर्णय करना चाहिए, इस विषय में वो बोलने में असमर्थ थे। पांडवों की खिन्नता का लाभ उठाकर दुर्योधन ने कहा, प्रातिकामी जाओ तो द्रौपदी को यहीं ले आओ। इसके प्रश्न का उत्तर मनुष्यों के द्वारा नहीं दिया जाएगा, सभा में दिया जाएगा। प्रातिकामी द्रौपदी के क्रोध से भी डरता था। उसने दुर्योधन की बात टालकर सभासदों से फिर पूछा कि हे सभासदों, आप बताओ मैं द्रौपदी से क्या कहूं। दुर्योधन को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने प्रातिकामी की ओर आंख फाड़ते हुए देखा। प्रातिकामी ने मुंह फेर लिया। तब दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, भाई ये क्षुद्र प्रातिकामी भीमसेन से डर रहा है, तभी तो ये भीमसेन की ओर बार बार देखता है। तुम जाओ द्रौपदी को पकड़ करके ले आओ। ये हारे हुए पांडव तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बड़े भाई की आज्ञा सुनते ही दुशासन लाल लाल नेत्र किए वहां से चल पड़ा और पांडवों के निवास स्थान में जाकर द्रौपदी से बोला, कृष्णे चल, तुझे हमने जीत लिया है, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन को देख। सुंदरी हमने धर्मतः तुझे पराया है, अब सभा में चल, कर कौरवों की सेवा, बन वहां दासी। दुशासन की कड़वी बात सुनकर द्रौपदी का हृदय दुख से भर गया, मुंह मलिन हो गया, आंखों के अंदर आंसू, बड़े बड़े आंसू बहने लगे। आर्त भाव से मुंह ढककर राजा धृतराष्ट्र की रनिवास की ओर दौड़ी। पापी दुशासन ने क्रोध से भरकर उसे डांटा और पीछे से दौड़कर महारानी द्रौपदी के नीले नीले घुंघराले और लंबे लंबे जाकर लंबे लंबे बालों को जाकर पकड़ लिया। हाय हाय, अभी यही बाल कुछ ही दिनों पहले रासु यज्ञ में अवभृत स्नान के समय मंत्रों से पवित्र किए गए, जल से सींचे गए थे, और आज दुरात्मा दुशासन पांडवों का तिरस्कार करने के लिए उन्हीं बालों को बलपूर्वक पकड़कर द्रौपदी को अनाथ के समान घसीटता चला जा रहा है। द्रौपदी का रोम रोम कांप रहा था, सिर झुक गया, वे खींची जा रही थी। द्रौपदी ने धीरे से कहा, अरे मूढ़ दुरात्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूं, एक ही वस्त्र पहने हुए हूं, ऐसी अवस्था में मुझे यहां ले जाना, सभा में ले जाना बहुत महान अनुचित है, अधर्म है, पाप है। दुशासन ने द्रौपदी की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उन केशों को जोर से पकड़ा और बोला, ए द्रुपद की बेटी, तू रजस्वला हो या एक वस्त्रा, भले ही तू गूंगी हो, भले ही तू नंगी हो, हमने तुझे जुए में जीता है, तू हमारी दासी है, अब तुझे नीच स्त्रियों के समान हमारी दासियों में रहना पड़ेगा। दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीटते लेके आया। दुशासन के घसीटने से द्रौपदी के केश बिखर गए, आधे शरीर से वस्त्र खिसक गया। वह लज्जावश क्रोध से लाल होकर धीरे धीरे बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में सभी शास्त्रों की ज्ञाता क्रियावान इंद्र के समान प्रतिष्ठित मेरे गुरुजन बैठे हैं, इनके सामने इस दिशा में मैं कैसे खड़ी रह सकती हूं? अरे दुराचारी, मुझे घसीट मत, नग्न मत कर, इस नीच कर्म से तनिक डर, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। देख, यदि इंद्र के साथ सारे देवता तेरी सहायता करेंगे तो भी पांडवों के हाथ से तेरा छुटकारा नहीं होगा। धर्मराज अपने धर्म पर अटल है, वे सूक्ष्म धर्म का मर्म जानते हैं, मुझे तो उनमें गुणी गुण दिखते हैं, धर्मराज में तनिक भी दोष नहीं है। हाय हाय, भरत वंश को धिक्कार है, इन कपूतों ने क्षत्रियत्व का नाश किया है। इस सभा में बैठे हुए कौरव अपनी आंखों कुल की मर्यादा का नाश देख रहे हो? तुम अपने आप को भरतवंशी कहते हो? कहां गया द्रोण का वो आचार्यत्व, कहां गया भीष्म पितामह का वो शास्त्र ज्ञान, और कहां गया महात्मा विदुर का आत्मबल? क्यों चुप बैठे हो? बड़े बूढ़े इस अधर्म को क्यों देख रहे हैं? द्रौपदी ने यह बात क्रोधित होकर पांडवों की ओर कनखइयों से देखते हुए कही, मानो वह उनके शरीर से दहकती हुई क्रोधाग्नि को और भी धधका रही हो। पांडवों की ओर जब द्रौपदी क्रोध अग्नि से जली हुई बोल रही थी, उस समय पांडवों को ऐसा दुख हुआ जैसा संपूर्ण राज्य धर्म और श्रेष्ठ रत्नों के छिन जाने पर भी नहीं हुआ। पांडवों की ओर देख देख कर दुशासन ने और भी जोर से द्रौपदी को घसीटा और कहा, हे दासी, बकवास करती है। दासी का धर्म सभा के अंदर सभासदों से कुछ पूछने का होता है? दासी का काम सेवा करने का होता है। कर्ण ने प्रसन्नता से उसकी बात का समर्थन किया, दुशासन तुम्हारी बात बिल्कुल न्याय संगत है। शकुनी की प्रशंसा की, वाह शकुनी, तुमने अपने कुल का गौरव बढ़ाया है। इन तीनों के अतिरिक्त सारे सभा सब बड़ा क्रूर कर्म देखकर लज्जित हुए रो रहे थे। द्रौपदी ने कहा, इन छली पापात्माओं ने धूर्तता से धर्मराज को जुआ खेलने के लिए तैयार किया, छल से उनका सर्वस्व जीत लिया। इन्होंने पहले अपने भाइयों को दाव पर लगाया है, तब अपने को हार कर मुझे दाव पर लगाया है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि अब उन्हें मुझे दाव पर लगाने का धर्म के अनुसार अधिकार था क्या? क्योंकि ये दास हो गए कि दास को रानीपना साम्राज्यत्व लेने का दास को क्या अधिकार है? यहां सभा में बड़े बड़े विद्वान कुरुवंशी बैठे हैं, मेरे प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दें, ठीक उत्तर न मिलने पर आप भी उस पाप के भागी बनेंगे। पांडवों का दुख और द्रौपदी की कातरता देखकर धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने कहा, हे सभासदो, चुप क्यों बैठे हो? कौन सा भय तुमको खा रहा है? साफ साफ द्रौपदी के प्रश्न का क्यों नहीं उत्तर देते हो? इसमें कोई त्रुटि है तो बोलो, और यदि आप द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आप नरकगामी होंगे। पितामह भीष्म, पिता धृतराष्ट्र, महामति विदुर जी, इस विषय में आप आपस में विचार विमर्श करके द्रौपदी का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? हे आचार्य द्रोण, हे कृपाचार्य, आप हमारे कुल के आचार्य कहलाते हो, क्यों चुप है? ये राजा रागद्वेष छोड़कर क्यों नहीं इस प्रश्न का उत्तर देते हैं? पतिव्रता सर्वश्रेष्ठ द्रौपदी के इन प्रश्नों का विचार करके आप अपना मत प्रकट कीजिए। इस प्रकार विकर्ण के बार बार कहने पर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, तब विकर्ण हाथ मलकर लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला, कौरवों ये सभासद उत्तर दे या न दे, इस विषय में मैं जिस बात को न्याय संगत समझता हूं वो कहे बिना नहीं रहूंगा। श्रेष्ठ पुरुषों ने राजाओं के चार व्यसन बहुत बुरे बताए हैं, एक शिकार करना, शराब पीना, जुआ खेलना और स्त्री प्रसंग में आसक्त रहना, इनमें संलग्न रहने पर मनुष्य का पतन होता है। यहां जुआरियों के बुलाने पर राजा युधिष्ठिर ने आकर जुए की आसक्तिवश द्रौपदी को दाव पर लगाया। द्रौपदी केवल धृतराष्ट्र की नहीं, उस पर पांच पांडवों का समान अधिकार है, यह बात भी आप ध्यान देने की योग्य है। युधिष्ठिर ने अपने को हारने के बाद द्रौपदी को क्यों दाव पर लगाया, इनको दाव पर लगाने का क्या अधिकार था? मेरे विचार से युधिष्ठिर को यह अधिकार नहीं था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने स्वेच्छा से नहीं शकुनी की प्रेरणा से दाव पर लगाया है। इन सब बातों से मैं तो इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि द्रौपदी जुए में नहीं हारी है। विकर्ण की बात सुनकर सभी सभासद उसकी प्रशंसा करने लगे, शकुनी के लिए हाय हाय और निंदा करने लगे, चारों ओर कोलाहल हुआ। शांति होने पर कर्ण ने क्रोध में भरकर विकर्ण का हाथ पकड़ लिया और ए विकर्ण, कौन होता है तू अपने बड़े भाइयों की गलती देखने वाला? तू इतनी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, मालूम होता है तू अरणी से उत्पन्न अग्नि के समान अपने ही वंश का नाश करना चाहता है। द्रौपदी के बार बार पूछने पर भी कोई सभासद उत्तर नहीं दे रहा है, तुमको उत्तर देने की क्या पड़ी? क्या तुम इस सभा में बहुत बड़े विद्वान, धर्मात्मा, धर्म को जानने वाले हो? इसका अर्थ यह है कि और कोई लोग धर्म को नहीं जानते, तुम ही जानते हो। सब लोग उसके धर्म के अनुसार जीती हुई मानते हैं। तू बचपन के कारण से अकबक करता है, बूढ़ों की सी बातें बनाता है, तू दुर्योधन से कितना छोटा है और दूसरे धर्म के मर्मज्ञ से तू परिचित भी, मर्म से परिचित भी नहीं है। तेरी तुच्छ बुद्धि का निर्णय क्या महत्व रखता है? कैसे तूने कह दिया कि मेरी बुद्धि के अनुसार ऐसा अधर्म है, कैसे बोल सकता है? युधिष्ठिर ने अपना सर्वस्व दाव पर लगाकर हार स्वीकार की है, तब द्रौपदी बिना जीते कैसे रही? द्रौपदी भी तो सर्वस्व के अंतर्गत है कि नहीं? क्या द्रौपदी को दाव पर लगाने में पांडवों की सम्मति नहीं थी? पांडव लोग तो बोलते ही नहीं है कि आप द्रौपदी को कैसे दाव पर लगाते हैं, और इसका निर्णय तू करने चला है? यदि तू ऐसा समझता है कि द्रौपदी को रजस्वला होने के समय सभा में नहीं लाना चाहिए था, तो सुन, इसका भी उत्तर मेरे पास है। द्रौपदी पांच पतियों की स्त्री होने के कारण निस्संदेह वेश्या है, इसलिए मेरी समझ से उसे एक वस्त्र अथवा वस्त्रहीना होने पर भी सभा में लाना अनुचित नहीं है। अतः पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी और उसका सब धन हार गए हैं। अब कर्ण ने दुशासन की ओर देखा। दुशासन, विकर्ण बालक है, बूढ़ों की सी बातें करता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। और द्रौपदी तथा पांडवों के सारे वस्त्र उतार दो। कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपर के वस्त्र उतार डाले और दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र उतारने का प्रयत्न करने लगा। जिस समय दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी सबकी ओर देखती है, सब अपना सिर नीचा कर लेते हैं। अब द्रौपदी को इस संसार में किसी का भी आश्रय नहीं दिखाई दिया। उसने मन ही मन भगवान का स्मरण किया, आर्त भाव से प्रार्थना की, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेम घन, हे गोपी जन बल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभो, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, आप सर्वत्र हैं, आपको यह मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे आरती नाशन जनार्दन, मैं कौरवों के दुख समुद्र में डूब रही हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं, आप सर्वस्व एवं सबके जीवन दाता हैं। गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तन्मय हो गई, मुंह ढांक कर रोने लगी। उसकी आहार्त पुकार भगवान के हृदय में पहुंच गई, भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त वत्सल प्रभु प्रेम परवश होकर द्वारिका की सेज, भोजन, लक्ष्मी सबको भूल गए और दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास पहुंच गए। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे हरे, इस प्रकार पुकार पुकार कर छटपटा रही थी। धर्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से वहां आकर बहुत से सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया। दुरात्मा दुशासन द्रौपदी को नंगी करने के लिए वस्त्रों का जितना खींचता था उतने ही वस्त्रों की बढ़ोतरी होती चली जा रही थी। रंग बिरंगे बहुत से वस्त्रों का वहां ढेर लग गया। धन्य है, धर्म की महिमा अद्भुत है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा अनिर्वचनीय है। सभासद ये देखकर आश्चर्य में डूब गए कि क्या हो रहा है, ये वस्त्रों का ढेर, रंग बिरंगे और एक से एक सटे हुए वस्त्र। चारों ओर सभा में हलचल मच गई। ये अद्भुत घटना देखकर सभी सभासद स्पष्ट रूप से दुशासन को धिक्कारने लगे और द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। उस समय भीमसेन के दोनों होठ क्रोध से कांप रहे थे, उन्होंने भरी सभा में हाथ से हाथ मलकर गरजते हुए शपथ ली, हे देश देशांतर के नृपतिगण, कुंती पुत्र भीमसेन की आप ये प्रतिज्ञा सुने। ऐसी प्रतिज्ञा आज तक न तो किसी ने इस धरती पर की है और न कोई आगे करने वाला होगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं, यदि वैसा मैं न करूं तो मुझे अपने पूर्व पुरुषों की गति न मिले। इसलिए आपके सामने शपथ खाकर कहता हूं कि मैं भीमसेन, युधिष्ठिर का अनुज, कुंती पुत्र, पांडु पुत्र, रणभूमि में बलात् भरत कुल कलंक पापी दुरात्मा दुशासन की छाती फाड़ डालूंगा और उसका गरम गरम खून सबके बीच में पीऊंगा। भीमसेन की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। सभी सभासद भीमसेन की प्रशंसा करने लगे, दुशासन की निंदा करने लगे। दुशासन अभी द्रौपदी के वस्त्र खींचने में ही लगा हुआ है, अब पहले जैसा उसका हाथ का खींचने का वेग नहीं रहा। धीरे धीरे वो थकने से लग गया, वस्त्रों का ढेर लग गया और अपनी असमर्थता देखकर वो खुद अपने पर ही खींचने लगा कि मुझसे वस्त्र नहीं खींचे गए। पर जब वो भी एकदम शक्तिहीन हो गया तो वो लज्जा के मारे वहां बैठ गया। चारों ओर तहलका मच गया। दुशासन के लिए सब कहने लगे, धिक्कार धिक्कार तेरे क्रिया को, कर्म को धिक्कार। लोग कहने लगे कि कौरव द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते हैं, हाय हाय बड़े खेद की बात है। अब धर्मज्ञ विदुर जी ने हाथ उठाकर सबको शांत करते हुए कहा, सभासद वृंद, द्रौपदी आप लोगों के सामने प्रश्न रखकर अनाथ के समान रो रही है और आप लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, आप लोग तमाशा देख रहे हो, आप लोगों के हृदय से सच्ची बात निकलती क्यों नहीं? क्या आपके हृदय से सत्य सदा के लिए समाप्त हो गया? ये अधर्म है। आर्त पुरुष दुखाग्नि से जलकर सभा की शरण ले रहा है और सभासद भयभीत हुए सत्य और धर्म को छोड़कर चुपचाप बैठे हुए। श्रेष्ठ पुरुषों को सत्य के अनुसार धर्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। मैं विकर्ण के द्वारा दिए हुए प्रश्न का उत्तर का समर्थन करता हूं। अब आप लोग भी राग द्वेष के वेग को रोककर द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो धर्मज्ञ पुरुष सभा में आकर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता, उसका आधा झूठ बोलने का पाप लगता है। जानते हुए भी जो चुप रहता है उसको आधे से ज्यादा पाप लगता है। जो झूठी बात कहता है उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। इस समय में आप एक इतिहास की बात सुनाता हूं। एक बार दैत्यराज प्रह्लाद के पुत्र विरोचन और अंगिरा ऋषि के पुत्र सुधन्वा ने एक कन्या प्राप्त करने के लिए आपस में विवाद कर लिया। विरोचन कहने लगा मैं श्रेष्ठ हूं, सुधन्वा कहने लगा मैं श्रेष्ठ हूं। ऐसी प्रतिज्ञा करके दोनों ने प्राणों की बाजी लगा दी। इस विवाद का निर्णय करने के लिए दोनों ने प्रह्लाद जी को कहा कि तुम मध्यस्थ बनो और हम दोनों के बीच में जो विवाद हो रहा है उस विवाद का निर्णय दो। उनके पास जाकर दोनों ने पूछा, आप ठीक ठीक निर्णय दीजिए कि हम दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। प्रह्लाद जी असमंजस में पड़ गए। दोनों की यह प्रतिज्ञा थी कि यदि हम श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपने प्राण त्याग देंगे। एक ओर पुत्र के प्राण, दूसरी ओर धर्म। कुछ भी निश्चय न कर सकने के कारण प्रह्लाद जी महर्षि कश्यप के पास गए और उनसे पूछा, हे महाभाग, आप देवता असुर और ब्राह्मणों का धर्म जानते हैं। मैं इस समय धर्म संकट में हूं। आप कृपा करके ये बतलाइए कि किसी प्रश्न का उत्तर न देने से अथवा जानबूझकर कुछ का कुछ उलट पुलट जवाब देने से क्या गति होती है। कश्यप ने कहा, प्रह्लाद, तो जानबूझकर राग द्वेष अथवा भय के कारण ठीक उत्तर नहीं देता, गोलमाल देता है, गवाही में ढिलाई करता है, किसी बात को किसी ढंग से और ढंग से बदल बदल करके बोलता है, वह वरुण के हजार पास में बांधा जाएगा। प्रत्येक वर्ष में उसके पास की एक एक गांठ खुलती है। इसलिए जिसे सत्य का सुस्पष्ट ज्ञान हो उसे सत्य बोलना चाहिए, जिस सभा में अधर्म हो तो अधर्म को साफ बोलना चाहिए। अधर्म से यदि धर्म को दबा दिया जाता है तो उस अधर्म का फल सभा को मिलता है, सारे सभासद पाप के भागी होते हैं। जिस सभा में निंदित पुरुष की निंदा नहीं होती वहां सभापति को उसके धर्म का अधर्म का आधा हिस्सा भोगना पड़ता है, करने वाले को चौथाई और अन्य सभासदों को पाप का चौथाई भाग मिलता है। जहां निंदित पुरुष की निंदा होती है वहां सभापति और सदस्य पाप मुक्त रहते हैं, सारा पाप केवल एक कर्ता को लगता है। प्रह्लाद जो जानबूझकर प्रश्न का उत्तर धर्म के प्रतिकूल देते हैं उनके आगे पीछे की सात सात पीढ़ियां और श्रौत स्मार्त आदि शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। साथियों से धोखा खाने पर मनुष्य को बहुत बड़ा दुख होता है। जो पुरुष झूठ बोलता है उसे उससे भी अधिक दुख भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष देखकर सुनकर और धारणा से भी साफ गवाही नहीं देता है, सत्य का साक्षी नहीं बनता है, उसका धर्म और अर्थ सब नष्ट हो जाता है। कश्यप जी की बात सुनकर प्रह्लाद ने अपने पुत्र से कहा, बेटा विरोचन, सुधन्वा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधन्वा की माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है और सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है, इसलिए अब ये सुधन्वा ही तुम्हारे प्राणों के स्वामी हैं, वे चाहे तुम्हारे प्राण लें चाहे प्राण छोड़ें, साफ बात तो यही है। सत्य प्रह्लाद की सत्यवादिता से प्रसन्न होकर सुधन्वा ने कहा, प्रह्लाद कितने आनंद की बात है, आप भगवान के भक्त हैं, आप पुत्र के प्रेम के परवश होकर धर्म को नहीं छोड़े, पुत्र को छोड़ दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं आपके पुत्र विरोचन को प्रेम से हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि अब यह 100 वर्ष तक जिएगा, अवश्य ही धर्म पर दृढ़ रहने से प्रह्लाद अपने पुत्र को मृत्यु से और अपने को अधर्म से बचाने में समर्थ हो गए, इसलिए सभासदों अपने धर्म और सत्य की दृष्टि से द्रौपदी का आपको उत्तर देना पड़ेगा। इतनी बात सुनकर के भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे सभासद चुप रहे, किसी ने उत्तर नहीं दिया। कर्ण ने कहा, दुशासन भाई, इस दासी द्रौपदी को घर ले जाओ। कर्ण की आज्ञा पाते ही दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को फिर घसीटने लगा। वह लज्जावश कांपने लगी और पांडवों की ओर देखकर बोली, सुनिए, पहले जब महल में मुझे वायु भी छू जाया करती थी तो आप लोगों को वो सहन नहीं होता था, आज ही दुरात्मा भरी सभा में मुझे घसीट रहा है और आप शांत भाव से सह रहे हैं। मैं कौरवों की पुत्री के समान पुत्रवधु हैं, पर वे मुझे इस क्लेश में पड़ी देखकर हे पांडवों आप चू तक नहीं करते, खैर ये समय का फेर है, इससे अधिक दयनीय बात और क्या होगी कि आज भरी सभा में मैं घसीटी जा रही हूं। आज राजाओं का धर्म कहां गया, बढ़ कर बात करने वालों की जिह्वा तालू से क्यों चिप गई, धर्मपरायणा स्त्री को इस प्रकार सभा में लाकर कौरवों ने अपना सनातन धर्म नष्ट किया है, मैं पांडवों की सहधर्मिणी हूं, धृष्टद्युम्न की बहन हूं और श्री कृष्ण की कृपा पात्र हूं, इतने पर भी आज मेरी ये दुर्दशा, कौरवों मैं धर्मराज की पत्नी और क्षत्राणी हूं, तुम मुझे दासी बनाना चाहो या अदासी जो कहो करूंगी, परंतु यह दुशासन कौरवों की कीर्ति में कलंक कालिमा लगाकर जो मुझे दुख दिया है उसे मैं किसी हालत में सह नहीं सकूंगी, तुम लोग मुझे जीती हुई समझते हो या नहीं वो तुम जानो, स्पष्ट बतला दो, मैं वैसा ही करूंगी जैसा मैंने आपसे कहा है। भीष्म पिता ने कहा, द्रौपदी धर्म की गति बड़ी गहन है, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान भी इसका अंत तक का रहस्य नहीं जानते हैं, जो धर्म सबसे बलवान और सर्वोपरि है वही अधर्म के उत्थान के समय में दब जाया करता है, जब अधर्म की आंधी चलती है तब उस समय धर्म का अत्ता पत्ता नहीं रहता है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है, गहन है, गौरवपूर्ण है, इसका ठीक निश्चय पूर्वक निर्णय करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इस समय ये कौरव लोभ और मोह के वश में हो गए, इनको इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यदि इनके अंदर कहीं धर्म की भावना होती तो ये द्यूत क्रीड़ा ही क्यों होती। यह इस बात की सूचना है कि शीघ्र ही कुरुकुल का नाश होगा। तुम जिस कुल की बहू हो, उस कुल के लोग बड़े बड़े दुख सहकर भी धर्म के मार्ग से नहीं दिखते थे, तब ये कुरुवंश गौरव को प्राप्त हुआ था, और आज ये अधर्म से जिस दुर्दशा के मार्ग पर चल रहा है, इसके द्वारा तो इसका विनाश होने वाला है। धर्मज्ञ द्रोण कृपाचार्य इस समय सिर झुका झुका कर प्राणहीन के समान सुन्न बैठे हैं। मैं समझता हूं धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का जैसा उत्तर दे वैसा ही प्रमाण माना जाए। तुम जीती गई या नहीं, इसका जवाब तो धर्मराज युधिष्ठिर ही दे सकते हैं। कौन कहा? भीष्म पितामह। सभी लोग दुर्योधन से भयभीत होने के कारण द्रौपदी की दुर्दशा और उसका करुण क्रंदन सुनकर भी उचित अनुचित कुछ नहीं बोले। दुर्योधन ने बड़े विजय और उन्माद में मुस्कुरा करके द्रौपदी से कहा, द्रुपद की बेटी, तेरा ये प्रश्न तेरे उदार स्वभाव पति भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, नकुल के प्रति है, इन्हीं से ही पूछो। ये तेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? यदि वे आज सभ्यों के समान कह दें कि युधिष्ठिर का तुझ पर कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने झूठा ही तुमको यहां दाव पर लगाया है, तो मैं अभी तुम्हें दासीपने से मुक्त कर सकता हूं। भीमसेन ने अपनी चंदन चर्चित दिव्य भुजा उठाकर कहा, सभासदो, यदि उदार शिरोमणि धर्मराज हमारे कुल के कर्ता धर्ता सर्वस्व न होते तो हम ये इतना बड़ा अत्याचार बाहुबल के रहते हुए कभी सहन नहीं करते। ये हमारे पुण्य है, हमारी तपस्या है, हमारे जीवन के स्वामी है। यदि ये अपने को हारा हुआ मानते हैं तो हम तो वैसे ही मर गए, हारे हुए हैं, इसमें संदेह क्या है। यदि मेरी प्रभुता होती, ये दुरात्मा दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर भूमि पर गिराकर और पैरों से ठुकराकर या सभा में लाए और जीवित रह जाए, मेरे इन लोह दंडों के समान लंबे और मोटे भुज दंडों को देखिए, मैं इसको बीच में ही पिसल देता, मसल देता। एक बार तो इंद्र को भी इसमें मैं पिस देता हूं। मैं धर्म की रस्सी से बंधा हूं, अर्जुन मुझे रोक रहे हैं, धर्मराज का गौरव मुझे इस संकट से पार होने के लिए कुछ नहीं करने देते। यदि धर्मराज मुझे इशारे से आज्ञा दें तो मैं इन क्षुद्र कीड़ों मकड़ों की तरह क्षण भर में इनको मसल सकता हूं। भीम की क्रोधाग्नि को भभकते हुए देख भीष्म, द्रोण और विदुर ने कहा, भीमसेन क्षमा करो, क्षमा तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, श्रेष्ठ पुरुष की श्रेष्ठता क्षमा के द्वारा ही मालूम देती है। तुम सब कुछ कर सकते हो, हम इतनी देर इसीलिए चुप रहे कि कहीं भीमसेन क्रोधाग्नि में आकर कुछ करने बैठे। शांत हो जाओ। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर यूं बेहोश से हो रहे थे। दुर्योधन ने उन्हें पुकार कर कहा, महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तुम्हारे वश में है ना, तो तुम्हें द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम ऐसा मानते हो कि द्रौपदी दाव पर नहीं आ रही? मतवाले, उन्मादी दुरात्मा दुर्योधन ने युधिष्ठिर से ऐसा कहकर कर्ण की ओर देखा, मुस्कुराया और मुस्कुराकर भीमसेन को लज्जित करने के लिए अपनी मोटी मोटी बाई जांग दिखाने लगा। भीमसेन की आंखें क्रोध से लाल हो गई, उसने चिल्लाकर सभा मंडप को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, दुर्योधन सुन, यदि महायुद्ध में तेरी ये जांघ भीमसेन ने अपनी गदा से नहीं तोड़ दी तो यह अपने पूर्व पुरुषों के समान सदगति को प्राप्त नहीं होगा। भीमसेन के उस समय क्रोध से रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थी। विदुर ने बीच में खड़े होकर कहा, राजाओ ये क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो? भीमसेन की वाणी आपके कलेजे में भय पैदा नहीं करती है? अवश्य ही आज का प्रसंग भरत वंश के लिए महान कलंक और अनर्थ का मूल है। धृतराष्ट्र कुमारो, तुम्हारा ये जुआ अन्याय से भरा है, तभी तो तुम भरी सभा में स्त्री के लिए लड़ झगड़ रहे हो। तुमने अपना सारा पुण्य और मंगल खो दिया है, तुम्हारी मति खोटे काम में लग रही है। भरी सभा में धर्म का उल्लंघन करने से सारी सभा को दोष लगता है, धर्म पर विचार करो। यदि युधिष्ठिर अपने को हारने से पहले द्रौपदी को दाव पर रखते तो अवश्य ही द्रौपदी हार सकती थी। पहले अपने शरीर को हार जाने के कारण उन्हें द्रौपदी को दाव पर रखने का अधिकार ही नहीं था। द्रौपदी को हमने जीत लिया है, हमने जीत लिया, ये तुम्हारा एक स्वप्न मात्र है। शकुनी की बातों में आकर धर्म का नाश मत करो, सावधान हो जाओ। ये सब प्रश्नोत्तर हो रहे थे कि धृतराष्ट्र की यज्ञ सभा में, यज्ञशाला में बहुत से गीदड़ इकट्ठे होकर ऐसे करने लगे, गधे रेंकने लगे, पक्षीगण उड़ उड़कर चिल्लाने लगे। सबके शब्दों में बड़ी कड़वाहट थी, भयंकर कोलाहल था। ये सब सुनकर अपने महल में बैठी गांधारी डर गई। द्रोण, भीष्म, आचार्य, कृप स्वस्ति स्वस्ति कहने लगे। विदुर और गांधारी घबरा कर राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना देने लगे। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, अरे दुर्विनीत, तेरा तो एक बार की सत्यानाश हो गया, तेरे कुबुद्धि से आज कुरुकुल की महिला और पांडवों की राजरानी को सभा में लाकर ऐसी बात सुनाता है? धृतराष्ट्र ने कुछ सोच विचार कर द्रौपदी को समझाते हुए कहा, बहू तुम परम पतिव्रता और मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो। इस सभा का सभापति होने के नाते, हस्तिनापुर का नरेश होने के नाते और तुम्हारा ससुर होने के नाते तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। द्रौपदी ने कहा, महाराज यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं केवल यही मांगती हूं कि धर्मात्मा युधिष्ठिर दासत्व से मुक्त हो जाए, जिससे मेरे पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश कोई दास पुत्र न कहे। धृतराष्ट्र ने कहा, कल्याणी जाओ, हमने तुमको ये वरदान दिया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, और तुम कुछ वरदान मांगो, क्योंकि तुम एक ही वर पाने योग्य नहीं हो, और भी वर पाने योग्य हो। द्रौपदी ने कहा, मैं दूसरा वर यह मांगती हूं, रथ और धनुष के साथ भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी दासत्व से छूटकर स्वाधीन हो जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, सौभाग्यवती बहु, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण हुई, परंतु इतने से मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। तुम्हारा जो अपमान हुआ है उसका दर्द मेरे हृदय में भी बहुत है, मैं तुम्हें और प्रसन्न करना चाहता हूं, तुम और भी मुझसे वरदान मांगो। द्रौपदी ने कहा, महाराज अधिक लोभ से धर्म का नाश होता है, तीसरा वर मांगने के लिए मेरे चित्त में उत्साह नहीं है, तो मैं बिना उत्साह के इसको मांगने की अधिकारिणी भी नहीं हूं। शास्त्र के अनुसार वेश्य को एक, क्षत्रिय स्त्री को दो, क्षत्रिय को तीन और ब्राह्मण को 100 वरदान मांगने का अधिकार है। इस समय मेरे पति दासता के दलदल में फंसकर छूट गए, अब वे स्वयं ही अपने सत्कर्म, शुभ कर्म और मांगलिक कर्म प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हैं। द्रौपदी की बुद्धिमानी की बातों को सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गया। और कर्ण ने वहां अपने साथियों से कहा कि द्रौपदी कितनी बुद्धिमती है, कितनी ऊंची बात कही है। भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, राजेंद्र मैं अपने शत्रुओं को यहीं या यहां से निकलते ही मार डालूंगा, अब तो हम दास रहे नहीं, मार डालूंगा। उस समय क्रोध के मारे भीमसेन का रोम रोम आग उबल रहा था, भौहें चढ़ी हुई थी, मुख विकट हो गया। युधिष्ठिर ने भीमसेन को शांत करते हुए कहा, भीमसेन अभी समय नहीं है। अब वे अपने ताऊ धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने कहा, महाराज आज्ञा दीजिए, अब हम क्या करें, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे पिता हैं, हम तो सदा ही आपकी आज्ञा में रहना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने कहा, अजात शत्रु युधिष्ठिर तुम्हारा कल्याण हो, तुम आनंद से रहो, तुम अपना सब धन लेकर लौट जाओ, अपने राज्य का पालन करो, बस इस अंधे और बूढ़े बाप की तुम्हारे लिए यही आज्ञा है। युधिष्ठिर मेरी बात तुम्हारे हित और मंगल के लिए सदा साथ रहेगी। तुम बुद्धिमान, धर्म मर्मज्ञ, विनम्र और बूढ़ों के सेवक हो, बुद्धि और क्षमा का मेल है, तुम क्षमा करो। उत्तम पुरुष किसी से बैर नहीं रखा करते, दोषों की ओर न देखकर गुणों की ओर देखो, और विरोध तो किसी से भी करते ही नहीं है, सत्पुरुषों का यही लक्षण है। सत्पुरुष चंदन के समान होते हैं, चंदन के वृक्ष को कोई काटता है तो चंदन अपनी सुगंध उस बसौली के अंदर भी डाल देता है। सत्पुरुषों की ऐसी दृष्टि रहती है, कोई बैर विरोध करता है उसको भी भूल जाया करते हैं, शत्रु की भी भलाई करते हैं, बदला लेने का उद्योग नहीं करते। युधिष्ठिर भीमसेन से कहना, कभी किसी प्रकार कोई बदले की भावना न रखे। नीच पुरुष साधारण बातचीत में कोई कड़वी बात बोल देते हैं, मध्यम पुरुष उसको सुनकर वापिस कठोर वचन बोलते हैं, परंतु उत्तम पुरुष कठोर वाणी का कभी प्रयोग नहीं करते। सत्पुरुष बुरी से बुरी स्थिति में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, उनको देखकर सब लोग प्रसन्न होते हैं। इस समय तुमने बड़े ही सौजन्य का व्यवहार किया है, सो भैया अब तुम मुझ बूढ़े ताऊ धृतराष्ट्र और माता गांधारी की ओर देखना, दुर्योधन का दुर्व्यवहार भूल जाना, अपने बूढ़े और अंधे ताऊ को याद रखना। मैंने पहले तो जुए का निषेध ही किया था, फिर मित्रों से मिलने जुलने और पुत्रों के बलाबल देखने के लिए मैंने ऐसी आज्ञा दी। तुम्हारे जैसा शासक और विदुर जैसा मंत्री पाकर कुरुवंश धन्य हो गया। तुम में धर्म है, अर्जुन में धीरता है, भीमसेन में पराक्रम है, नकुल और सहदेव में विशुद्ध गुरु सेवा का भाव है। धर्मराज तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम सब कुछ भूलकर खांडव प्रस्थ की ओर प्रस्थान करो। महाराज युधिष्ठिर ने बड़ी नम्रता से शिष्टाचार के साथ प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र की अनुमति प्राप्त करके अपने भाई बंधु इष्ट मित्रों सहित सभी को प्रणाम अभिवादन करके इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्यावर रामचन्द्र की मोर मुकुटवंशी वाले की अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की आनंद कंद भगवान की भक्त वत्सल भगवान की जय राम।